नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी ओम शांति। जो पूरी श्रृंखला में हमारी बातचीत रहती है उसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके जीवन में जो कुछ घट रहा है उसी का अक्स नजर आए हमारे इस प्रोग्राम में, और फिर हम बाबा का ज्ञान लेकर सॉल्यूशंस ढूंढते जाएं, एक एक समस्या को उठाएं, एक एक सब्जेक्ट को लें और फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते जाएं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपके जिंदगी से जुड़ी होती हैं, आपके मन में उठ रही होती हैं, उन सवालों को सीधा हम आप ही के सवालों के रूप में लेते हैं। और आज इस कड़ी में भी बात हम कर रहे हैं और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ हैं सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शीलू बहन, और जो कि खास माउंट आबू से आई हैं, और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।
आपका बहुत बहुत स्वागत। और जिस तरह से आप लोगों के सवालों के जवाब देती जा रही हैं शीलू बहन, कहीं ना कहीं वो सवाल जो बहुत इंडिविजुअल हो जाते हैं, बहुत ऐसा लगता है कि अब इसके आगे ये कहाँ, आगे मैं कहाँ बढ़ूं, क्योंकि जिस जर्नी में हम होते हैं कई कई ऑब्स्टिकल्स आने लगते हैं, तो वो ऑब्स्टिकल्स जब हटते जाते हैं तो अभी तक जो आपके पास सवाल आ रहे हैं, जिस तरह से लोग जो हैं वो अपनी बातें परमात्मा के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम परमात्मा के ऊपर ही ज्यादा बात करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या हम सचमुच में परमात्मा के सही स्वरूप को समझकर योग के माध्यम से जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं उन्हें कन्वर्ट करने में पॉसिबल हो पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं?
बिल्कुल कर पा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने अपनी समझ हमें स्वयं दी है और उस समझ को धारण करके, उनको याद करके हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। तो जो जो ये प्रक्रिया कर रहे हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है।
बिल्कुल। और ये अनुभव जो है वो एक्चुअली कुछ कुछ टाइम बाद दिखते हैं, लेकिन वो दिखने लग जाते हैं।
बिल्कुल दिखने लग जाता है।
तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक सवाल हमारे पास आया है कि आपने कहा था मेडिटेशन इज रिमूवल ऑफ सम काइंड ऑफ अ मेंटल वूंड, जिसे हमने कहा था कि मेडिटेशन इज बेसिकली हीलिंग। मेडिटेशन का अगर हम शाब्दिक अर्थ भी देखते हैं तो इट मींस टू हील, मेडिटेट।
या तो हीलिंग कैसे होती है, इनडायरेक्टली यू कैन से इट इज रिमूविंग अ वूंड, नो डाउट।
बिल्कुल।
तो क्योंकि हम अपने मन को समझ देते हैं बुद्धि के द्वारा, समझो कोई ऐसी दुखद घटना हुई,
क्योंकि एक्चुअली हीलिंग क्यों चाहिए, क्योंकि हम दर्द में हैं, हम किसी भी रूप में अगर देखते हैं, चाहे हमने हर्ट लिया हुआ है, चाहे हमारे पास एंगर है, चाहे हमारे पास लोगों से जुड़ा हुआ है, अगर शीलू बहन देखते हैं तो हम में से हर कोई दर्द में जी रहा है। एक और आगे पूछ रहे हैं कि आपने एक्सप्लेन किया कि उसका मतलब है कनेक्टिंग आत्मा विद परमात्मा, तो उसकी क्या जरूरत है?
नहीं, पहले तो हम ये समझिए हीलिंग प्रोसेस कैसे है। एक तो हम आत्मा के ज्ञान से महसूस करते हैं कि मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, तो शक्तिशाली होने के कारण जो मेरे सामने ये छोटी छोटी बातें आती है ये मुझे लगनी नहीं चाहिए, महसूस नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति हो, एक पत्थर हो, पहाड़ हो, उसको कितनी भी कोई ठोकर मारे, पत्थर को या पहाड़ को क्या लगेगा, तो मैं स्ट्रांग हूँ। तो उस स्ट्रेंथ को अंदर से जब हम समझते हैं तो हमें ये छोटी छोटी बातें दुख कष्ट नहीं देती है, ये आत्मा के ज्ञान से। दूसरा, परमात्मा के ज्ञान से हमें वो शक्ति आती, मैं अकेला नहीं हूँ। कहा जाता है जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, तो भगवान मेरे साथ है, उनकी छत्र छाया मेरे सिर पर है, तो उस सर्वशक्तिवान की शक्ति मुझे मिल रही है, तो छोटी छोटी बातों में मैं क्यों उलझ रहा हूँ।
और इनफैक्ट अगर हम देखें तो जिस युग में हम रह रहे हैं शीलू बहन, जहाँ पे चारों तरफ पूरा वातावरण ही नहीं, पर्यावरण और हर तरह के सर्कमस्टांसेस और लोग जो हैं वो इतनी नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, और उसी में मुझे जीवन जीना है
जी, इसलिए वो राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम इतनी पॉजिटिविटी अपने अंदर भरते जो नेगेटिविटी मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डालती। और तीसरा, जो ड्रामा का हमें ज्ञान मिला है, इस ड्रामा के ज्ञान से हम कई बातों को उसे फुल स्टॉप लगा सकते हैं, विस्तार को संकीर्ण कर सकते हैं, समेट सकते हैं सहज रीति से, तो मन को हम शांत कर सकते हैं। ये जो मन को शांत करना हम सीख जाते हैं उससे हमारी बहुत हीलिंग होती है। जैसे वूंड को हील करने के लिए दवा लगाते हैं, मलहम लगाते हैं, ये मलहम का काम करते हैं। अंतर में बहुत सांत्वना आती है, संतोष आता है, एक आथत मिलती है, एक अंदर का एक जैसे वो कंटेंटमेंट की फीलिंग है कि जो कुछ हो रहा है इसमें कोई राज है, कोई कल्याण है। उस राज और कल्याण को हम समझ करके उसमें हम दुखी नहीं होते।
ये तो है कि हम एक जब भरने लगते हैं अंदर से तो हम बहुत कंटेंटेड फील करने लगते हैं, और जब हम डिप्लीटेड हैं, और वो योग से ही होता है कि जो कंटेंटमेंट और यू नो एक भरना जो है पूरा।
क्योंकि क्या है, योग से अंदर हम शक्तिशाली बनते हैं। देखिए कोई चीज है अंदर शक्तिशाली है, भरपूर है तो हिलती नहीं, खाली होगी तो हिलेगा। मटका है, खाली होगा तो हिलेगा, भरपूर होगा तो हिलेगा नहीं। तो अंतर से जो भरपूर होते जा रहे, इसलिए बाहर की चीजें हम हिलाती नहीं।
बिल्कुल, तो यहाँ ये एक क्लैरिटी जरूर आ जाती है। और इन्होंने कहा कि आई विश टू मेडिटेट जस्ट टू कनेक्ट विद परमात्मा, आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ बून, यू नो इट इज नॉट फॉर हीलिंग एनी वूंड ऑल्सो।
या ठीक है, तो हम कहते हैं ये मदद है कि हीलिंग होती है, पर समझो ये नहीं भी चाहिए तो परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ना ये तो बहुत ही सुखद बात है। जैसे किसी से संबंध हो जाए कितनी खुशी होती है, और ये तो सर्वशक्तिवान परमात्मा से संबंध है, इनसे और खुशी की बात क्या होगी। तो उससे ऑटोमेटिकली खुशी आत्मा को महसूस होती ही है, क्योंकि उस ऊंचे से ऊंचे के साथ मेरा संबंध हो गया है।
बिल्कुल, तो मेडिटेशन कैन बी एक्चुअली इन एनी, हमने एक बार पहले भी बात जो की है कि चार स्टेजेस में मेडिटेशन होती है, कि हम इनिशिएट जब करते हैं, फिर हम मेडिटेट यानी परमात्मा के साथ कॉन्वर्जेशन में आते हैं, और फिर जो है हमारा
कंसंट्रेशन करते हैं,
हम लीन हो जाते हैं, फिर रियलाइजेशन वाली अनुभूतियां होने लगती हैं।
जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा गई, और समा करके समान बन गई, संपूर्ण बन गई।
अच्छा, अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा गई है ना, तो यहाँ ये कहते हैं कि इसका मतलब देखा ना कि आत्मा तो परमात्मा में ही समाएगी।
ये जो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा में समाती, इसका भाव भावनात्मक अर्थ है। जैसे कोई किसी के प्यार में खो जाता है, तो खो गया माना अपना अस्तित्व उसने भुला दिया, तो इसका मतलब ये तो है कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाता
है। सब्लिमेशन जिसके हम कहते हैं कि वी एक्चुअली डिसॉल्व आवरसेल्फ,
वी डिसॉल्व कहो, एब्जॉर्ब कहो, मर्ज कहो, लेकिन दिस इज न वेरी वेरी सटल फॉर्म, इट्स इन अ स्पिरिचुअल वे, नॉट इन अ फिजिकल वे। अब वो फिजिकल वे में जैसे एक बूंद सागर में समा गई तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया ना,
वो एंटिटी हमारी बनी रहती है,
ये एंटिटी बनी रहती है। इसीलिए इट्स नॉट कि आत्मा विलीन हो गई तो खत्म हो गई उसका अस्तित्व, ये नहीं है। ये प्यार में आत्मा खो गई, तो प्यार में खो करके हम अपने अस्तित्व को भुला देते हैं, पर वो अस्तित्व है तो सही।
बिल्कुल, तो ये
हमें तो नहीं होता अस्तित्व,
रियल सेंस में देखना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय दैट। एक सवाल हम यहाँ लेना चाहते हैं, बीकानेर राजस्थान से इन्होंने भेजा है। ही सेज दैट आई एम अ 27 ईयर ओल्ड वर्किंग प्रोफेशनल, माय मदर इज सफरिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंज इलनेस वेयर शी हैज लॉस्ट हर इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, ऑल द टाइम शी कंप्लेन्स दैट गॉड इज पनिशिंग हर फॉर हर मिस्टेक्स। यू नो दिस इज सो पेनफुल, ये इतना तकलीफ दे चीज है।
यही उसे बदलना होगा अपना विचार कि परमात्मा हमें कोई पनिशमेंट नहीं देता, हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं। ये भी एक ऐसे महसूस करते कोई हिसाब किताब है किसी जन्म का, और अगर परमात्मा की याद है तो वो तो सूली से कांटा हो रहा है। सूली समान उसका स्वरूप हो सकता है, लेकिन परमात्मा की याद से वो कांटे के रूप में खत्म हो रहा है। तो जो भी ये हिसाब किताब आते हैं ये सब सूली से कांटा हो रहे हैं, सूली से कांटा हो रहे हैं। अगर ये हम समझेंगे ना तो उसमें दुखी नहीं होंगे।
बिल्कुल, और परमात्मा कभी भी आपसे नाराज नहीं हो सकता, ये हम हर बार कहते आ रहे हैं।
हाँ बिल्कुल,
गॉड कैन नेवर, इनफैक्ट गॉड इज एक्चुअली वॉन्टिंग टू लव अस।
यस, गॉड लव्स अस ऑल द टाइम,
बट राइट नाउ
हम कैसे भी हैं, भगवान के अंदर में हमारा प्यार, हमारे प्रति प्यार कभी कम नहीं होता। तो ये संकल्प ही हम न करें कि कोई पनिशमेंट है।
यहाँ इनकी प्रॉब्लम पर, इनकी मदर की प्रॉब्लम यही है कि शी ब्रेक्स इन टू क्राइंग एवरी आवर एंड कीप आस्किंग फॉर क्योर, और वी हैव कंसल्टेड अ फ्यू डॉक्टर्स बट फॉर नो क्योर। तो मुझे लगता है शीलू बहन, इन्हें हम यही कह सकते हैं कि आई थिंक शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन।
डिप्रेशन के कारण ये सब होता है, और डिप्रेशन भी आता है कि नेगेटिव थिंकिंग अबाउट द सेल्फ, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग अपने प्रति धारण करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा।
एक और ऐसा ही उनका सवाल क्वेश्चन है कि आई एम ऑलवेज सैड अनहैप्पी एंड ऑल्सो जॉबलेस। ये सारी चीजें एक साथ है, ये और बहुत सारे लोगों के साथ आजकल हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मास्टर्स इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिप्यूटेड कॉलेज, आई हैव बीन चीटेड, टॉर्मेंटेड, टॉर्चर्ड, ह्यूमिलेटेड, इंसल्टेड, and those crooks who did it are enjoying. I've lost faith in God, although I used to be spiritual.
यही अपने अंदर में धीरज रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति बुरे काम करके भी मौज कर रहा है, खुश हो रहा है, आनंद महसूस कर रहा है, ये कोई उसके बुरे कर्मों का फल नहीं है, ये उसके कोई पूर्व के ऐसे अच्छे कर्म है जिसका वो फल पा रहा है। अभी जो वो कर्म कर रहा है वो तो संचित हो रहे हैं। और मेरा हो सकता है कोई ऐसा गलत कर्म मेरा होगा जिसके कारण कुछ दुख महसूस हो रहा है।
खुद ही कह रहे हैं कि आई एम सफरिंग बिकॉज गॉड हैज नॉट गिवन मी एनी मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस, अवेयरनेस ऑफ व्हाट टू डू एट व्हाट टाइम। नॉट
ब्लेम टू गॉड फॉर दैट। ये और ये भी क्यों सोच रहा है कि मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे अंदर नहीं है। दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास ये भी नसीब नहीं है जो हमारे पास है। यू नो, there are many people who are so downtrodden that they have nothing compared to what we have. तो अगर उस रूप से हम देखें, हम तो बहुत भाग्यशाली है। अब इतनी पढ़ाई की है, कोई कम भाग्य है? कई बेचारे पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं।
तो वही वो कह रहे हैं कि मैं इतना डिप्रेस्ड, फ्राइटेंड फील करता हूँ जब भी मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, बिकॉज पीपल इन माई एरिया अब्यूज मी, स्पेशली बिफोर इंटरव्यू, एंड ऑलवेज सम प्रॉब्लम अकर्स एंड आई यूजली डोंट अटेंड द इंटरव्यू ऑल्सो। आई हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस, आई एम ऑल्सो एजिंग, आई डोंट नो वॉट टू डू, आई फील लाइक डाइंग।
नहीं,
यहाँ इतना डिप्रेशन में गए हुए हैं ये भाई।
हम तो कहते हैं इस विशेष साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। और विशेष साइकिल को तोड़ने का सबसे सहज उपाय है अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये सोचना, आई विल विन, आई विल डेफिनेटली गेट इट, आई विल डेफिनेटली गेट। तो जैसे आई विल नॉट गेट, आई विल नॉट अचीव, ये सोचते उसकी वजह पॉजिटिव सोचो।
इनफैक्ट यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग। अगर हम शीलू बहन, ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि वो थॉट क्रिएट के हम विजुअलाइज कर लें कि जो भी मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ उसमें मैं सफल होऊंगा।
और हमेशा कोई फेल हुए हैं ये भी तो बात नहीं है, न जाने कितनी बार हम सफल भी तो हुए हैं ना। तो जो सफल हुए हैं वो विजन में लाए ना, हम जो असफल हुए हैं वही विजन में ले आते हैं, इसीलिए हमारा विशेष साइकिल हो जाता है। तो पहले जो हम विजन क्रिएट करें वो सफलता का विजन क्रिएट करें। ऐसे हो ही नहीं सकता कि जीवन में कहीं भी सफलता न मिली हो। अब इतनी ऊंची पढ़ाई कर ली तो सफलता के बिना थोड़ी कोई इतनी ऊंची कोई पढ़ाई कर सकता। कई तो बेचारे बच्चे हम देखते हैं बचपन में स्कूल छोड़ देते हैं, कई कॉलेज में आकर के छोड़ देते, नहीं पढ़ सकते, कई कारण बनते। अब इतने हद तक पढ़ाई की तो वो तो सफलता की निशानी है। तो उस हिसाब से देखे, फिर वही फीलिंग्स लाए और उसके आधार से फिर कॉन्फिडेंस से पेपर देने जाए या एग्जामिनेशन देने जाए तो क्यों नहीं पास होंगे।
बिल्कुल। और ये भी मान के चलिए आपकी, आपके सब जो अपने हैं वो आपके अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि ये भी कई बार हमारे मन में वो धारणा रहती है कि वो मेरे को कुछ ना कुछ कर देंगे, कुछ ना, तो वो हो जाता है।
बिल्कुल, यू नो व्हाट, हम अपने मन में जो सोचेंगे वही होगा।
कहते भी है ना शीलू बहन की, जाकी रही भावना जैसी।
हाँ, तो जैसी भावना होती है वैसा ही भाड़ा मिलता है। तो अगर मेरी भावना ही अगर नेगेटिव की है तो वही परिणाम होगा। तो हर वक्त हम अपनी भावना को शुभ ही रखें, शुद्ध ही रखें, एक बहुत बड़ी कला है ये। ये कला अगर हम सीख लेना तो कभी भी जीवन में दुखी नहीं होंगे।
बिल्कुल। और आपसे तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये जैसा कि कहा शीलू बहन ने कि अपने विशेष सर्कल को तोड़िए, क्योंकि ये तोड़ना भी आप ही के हाथ में। अगर आप इतनी लंबी बात हमसे लिख सकते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस है कि ये एक विशेष सर्कल में आप फंसे हुए हैं और उसे तोड़ने का जो क्षमता है वो भी आपके पास ही है। क्योंकि हम हर बार ये कहते हैं इस राजयोग में जब बात करते हैं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार मैं हूं, तो अगर मैं ही जिम्मेदार हूं तो मैं ही परिवर्तन भी कर सकती हूँ।
हाँ,
अगर उसका बेस्ट पार्ट देखें तो।
लेकिन जब हम कहते हैं मैं जिम्मेदार, तो इसमें भी हम नेगेटिव में चले जाते हैं। मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे ही पाप है, मेरा ही ये है। लेकिन अपने आप को क्षमा करना भी सीखे, हम अपने आप को क्षमा करें। यू नो, टू फॉरगिव एंड फॉरगेट एक बहुत बड़ी कला है। कई बार हम फॉरगिव तो कर लेते पर फॉरगेट नहीं कर पाते।
बिल्कुल। और फिर जैसे याद करते हैं उसके साथ का जुड़ा हुआ दर्द भी उसी टाइम पे याद आता है।
बिल्कुल आ जाता है।
तो ये एक हमें बात जरूर करनी है कि फॉरगेट, अच्छा कई बार शिलू मैंने देखा है कि फॉरगेटनेस नहीं होती है, आपको वो याद तो रहेगा ही सिचुएशन, लेकिन जरूरी ये है कि उसके साथ जुड़ा हुआ जो भाव है दर्द का या हर्ट का या नफरत का वो ना आए।
हाँ वो भी बहुत जरूरी है। तो कई बार फॉरगिव तो कर लेते हैं, ठीक है अपने आप को फॉरगिव कर लिया, दूसरे को भी फॉरगिव कर लिया, पर फॉरगेट करने के लिए फिर एक पॉजिटिव बातें सोचे, उसकी भी अच्छाई क्या मिली, उसमें क्या एडवांटेज हुआ, क्या मैं उससे सीखा, वो अगर पॉजिटिव सोचना शुरू करे तो फिर वो नेगेटिव बात भूल जाएंगे।
बिल्कुल, तो हमारा ये आपसे यही कामना करेंगे कि इस बार आप बिल्कुल जरूर दोबारा उठिए जाइए और विजुलाइज कीजिए कि आप जो है सिलेक्ट हो गए हैं, देन आई थिंक डेफिनेटली आप राजयोग का जब जब माध्यम अपनाएंगे, जब योग जोड़ेंगे,
और जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो पहले परमात्मा को याद करें,
मेरा
परमात्मा को अपना साथी समझे और उस साथी को साथ रखें, जो भी बोझ है, जो भी आपके अंदर में कुछ भी महसूस है कि ये नहीं गलत कुछ भी, सब ईश्वर को सौंप दो। तो परमात्मा को सौंप देने से आप हल्के हो जाएंगे, परमात्मा आपका कार्य करेंगे। हम तो अनुभव बहुत बार ये कर चुके हैं कि कैसे शिव बाबा अपने आप कार्य करते, हमने हम तो अपनी जिम्मेदारी उनको दे देते हैं और सचमुच कार्य सफल होता है, आप करके देखिए।
तो ये हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि जरूर जिंदगी में परिवर्तन होगा। एक सवाल जो है वो और हम लेते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि आई डू मेडिटेशन एवरी डे बाय मेनी टाइम्स बट आई एम इन अ कंफ्यूजन दैट एवरी मेडिटेशन गिव्स अस पीस विद इन्वॉल्विंग गॉड और विदाउट इन्वॉल्विंग गॉड, देन व्हाई शुड वी कंसिडर दैट गॉड एग्जिस्ट इवन इफ वी कैन डू मेडिटेशन बाय राजयोग without involving any God?
Actually,
is it necessary to involve?
Actually, without involving God, the meditation is not proper. Let me tell you. क्योंकि परमात्मा ही इन गुणों का सोर्स है ना, अगर उस सोर्स से कनेक्ट करेंगे ही नहीं तो ये लास्टिंग कैसे होंगे आपके गुण। हाँ आत्मा के अंदर भी गुण है क्योंकि आत्मा की कॉन्शियसनेस से भी ये गुण अनुभव होते हैं, लेकिन परमात्मा के साथ कनेक्ट करने से ये गुण सदा के लिए अनुभव में आएंगे। जैसे एक रिचार्जेबल बैटरी को चार्ज मिलती रहेगी तो वो डिस्चार्ज होगी नहीं, तो आत्मा को भी परमात्मा से चार्ज लेने की आवश्यकता है।
अब हमने पहले भी एक बार बात की थी कि अब काइनेटिक एनर्जी की स्टेज में है जो सोल है, उसको पोटेंशियल एनर्जी की हायर स्टेट में ले जाने के लिए विल बी नीडिंग एक्सटर्नल एनर्जी,
एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए,
तो वो हमें चाहिए ही होगी, और आज के इस वक्त में जिसमें है उसमें तो परमात्मा स्वयं कह रहे हैं।
और दूसरी बात, जैसे उन्होंने पीस की बात कही तो शांति तो हमें नींद में भी आती है, केवल मेडिटेशन की शांति तो नहीं है, नींद में भी हमें शांति आती है। कई बार जैसे नींद आ गई हम कहेंगे बहुत शांति मिली, पर हमें नींद की शांति अनुभव करने ये लक्ष्य नहीं है, और केवल शांति नहीं, शांति के साथ प्रेम सुख आनंद खुशी शक्ति ये तो परमात्मा से संबंध जोड़ने से आएगी।
हीलिंग की बात हमने पहले भी की है कि मेडिटेशन मीन्स हीलिंग, नॉट जस्ट पीस बट लेकिन हमें जो हील बाकी जो जितने वूंड्स हम ले चुके हैं, जितनी हमने हर्ट लिया हुआ है, जितनी सारा डिप्लीशन है
जी,
उसको
जी।
उसके हीलिंग के लिए हमें परमात्मा का साथ चाहिए ही होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, सीएन प्रभाकर जी ने लिखते हैं कि इट इज एक्सेप्टेड दैट शिव बाबा द परमात्मा इज अ क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, एज देयर शुड बी अ क्रिएटर फॉर एवरी क्रिएशन, प्लीज लेट अस नो हु क्रिएटर शिव बाबा द परमात्मा as per scientist professor Laplace theory of big bang which created this world, who was instrumental for big bang nobody knows.
Actually Shiv Baba hame apni rachna ka bhed swayam hi bata rahe hain, you know what is the truth or the secret of God's creation is, Paramatma hame kehte hain ki teen shaktiyan anadi aur avinashi hai, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा और तीसरी प्रकृति, ये तीनों ही अनादि अविनाशी है, इन तीनों को किसी ने भी नहीं बनाया। बिग बैंग थियोरी की जहां बात आती है तो वहां समझते भी उसके अंदर वो एनर्जी थी और एक्सप्लोड हुई, लेकिन फिर प्रश्न कि वो भी कहां से आया, तो हम कहते हैं ये बिग बैंग थियोरी की बात ही नहीं है, प्रकृति हमेशा ही थी, ये पंच तत्व हमेशा ही थे, ये प्लैनेट्स हमेशा से ही है, कोई नई चीज नहीं है। और अंतर ये है कि खेल दो के बीच में, तीन के बीच में खेल नहीं है, आत्मा और शरीर, पुरुष और प्रकृति, खेल इन दो के बीच में, और इस खेल के बीच में जब पुरुष प्रोमिनेंट है, प्रिडोमिनेंट है, और प्रकृति उसके कंट्रोल में है, तो ये संसार सतयुग है। लेकिन सृष्टि चक्र अनुसार समय आता है जब प्रकृति मालिक हो जाती है और पुरुष या आत्मा उसका सबऑर्डिनेट हो जाता है, और परिणाम स्वरूप संसार कलयुग है। जैसे कार का ड्राइवर कंट्रोलर हो और होश में है तो गाड़ी चलाना तो खेल है, इट्स अ गेम, इट्स अ प्लेजर। लेकिन अगर वो स्थिति आ जाए जो ड्राइवर के बदले गाड़ी कंट्रोलर बन जाए और ड्राइवर कंट्रोल कर ना सके, तो केओस, दुख, अशांति, एक्सीडेंट, डेथ, ये सारी नेगेटिविटी आ जाएगी। तो कलयुगी दुनिया में ये स्थिति है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो परमात्मा को इंटरवीन करना पड़ता है, और वो इंटरवीन करके फिर से पुरुष यानी आत्मा को मालिक बनाता है और प्रकृति को अधीन करता है, फिर सतयुग आता है। तो ये संसार का खेल है।
बिल्कुल। और पुरुष प्रकृति की बात जो है वो काफी टाइम से हम उसका सही स्वरूप जो है वो आज हम समझ सकते हैं।
जी, जी, जी।
कि जहाँ प्रकृति जब हावी होनी शुरू हो गई, और प्रकृति अगर हम देखें तो पांच तत्वों का शरीर में तो प्रकृति है,
बिल्कुल वही प्रकृति
वो हावी अगर हम पे हो गई है,
इंद्रियां हावी हो गई आत्मा पर,
तो यहाँ जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
बिल्कुल, इसीलिए ये नहीं कि हर चीज का रचयिता है, लेकिन ये तीनों शक्ति अनादि अविनाशी है। तो ये भी प्रश्न नहीं हो सकता कि परमात्मा को किसने बनाया। अब परमात्मा को किसने बनाया, तो जिसने उसको बनाया तो वो परमात्मा होना चाहिए। फिर उसको किसने बनाया, तो जिसने उसको बनाया वो परमात्मा।
तो कहा ही जाता है कि परमात्मा स्वयंभू है,
स्वयंभू है, आत्मा भी स्वयंभू है, प्रकृति भी स्वयंभू है, तीनों को किसने रचा नहीं है। लेकिन परमात्मा को हम पिता क्यों कहते हैं, रचयिता क्यों कहते हैं, क्योंकि परमात्मा आकर के इसका परिवर्तन करते हैं, आत्मा को फिर से मालिक बनाते ही जो परिवर्तन की शक्ति परमात्मा में है, इसलिए वो रचयिता है।
तो नव मानव का निर्माण होगा,
नव मानव का, नई दुनिया का, नव युग का, नए कल्प का, नए सृष्टि चक्र का। तो ये निर्माण का कार्य, फिर से स्थापना का कार्य, ये परमात्मा का कार्य है।
बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं बहुत से दर्शकों को ये कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। एक सवाल लेते हैं, आई वॉन्ट टू नो वॉट इज डेथ, If without God's wishes nothing moves, then why people die unnaturally?
अब हम ये भी इसमें बताना चाहते हैं, इस नॉट कि विदाउट गॉड्स विश नथिंग मूव्स, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जैजरेशन है कि पत्ता हिलता तो भगवान के हुक्म से ही हिलता है। नहीं, ये प्रकृति की शक्ति है। प्रकृति में भी सतो रजो तमो स्थिति आती है, प्रकृति में स्थापना पालना विनाश होता है, ये प्रकृति की शक्ति है। आत्मा के अंदर भी स्थापना पालना विनाश है। हम मकान बनाते हैं, फिर उसको मेंटेन करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये आत्मा की स्थापना पालना विनाश की शक्ति है। फिर परमात्मा में जो स्थापना पालना विनाश की शक्ति है, वो एक बेहद का रूप है, सृष्टि का ही के चक्र की स्थापना पालना विनाश उस हिसाब से है। इसीलिए वास्तव में ये नहीं कि कोई भगवान के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता, तीनों की अपनी अपनी शक्ति है, तीनों का अपना अपना
लॉज ऑफ नेचर कहा जाता है, और लॉज ऑफ स्पिरिचुअल लॉज की बात होती है।
परमात्मा न आत्मा के कर्म में हस्तक्षेप करेंगे, न प्रकृति के एक्टिविटी में हस्तक्षेप करेंगे। हर चीज अपने नियम अनुसार चलती है।
इफ द कर्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ, देन व्हाई इन्फेंट्स डाई Who has not done any karma? जो बच्चा अभी पैदा हुआ होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनकी मृत्यु क्यों
नहीं? लेकिन बच्चा तो शरीर है ना, आत्मा तो पूर्व जन्म से आई है ना, इसीलिए क्या उसके पूर्व जन्म के कर्म होंगे जो जन्म लेते ही वो आत्मा शरीर छोड़ देती है। जैसे हम कई बार देखते हैं, बच्चा पैदा हुआ गोल्डन स्पून इन माउथ, बच्चा पैदा हुआ पिता करोड़पति है, बेटे के नाम पर 1,00,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया, तो बच्चा लखपति बन गया जन्म से, अभी क्या कर्म कीजिए लखपति बन गए। अवश्य पूर्व जन्म में उस आत्मा ने बहुत दान पुण्य किया होगा, तभी तो अगले जन्म में वो धनवान के घर में पैदा होता है। तो ये केवल उस बच्चे का रूप ना देखे, वो आत्मा तो पूर्व जन्मों से आई है।
बिल्कुल। तो वो जो जर्नी ऑफ सोल कंटिन्यूज एक्चुअली। एक यहाँ पे सवाल हम ले लेते हैं, व्हाई डिड गॉड द क्रिएटर क्रिएट लिविंग बीइंग्स लाइक mosquitoes and cockroaches which invade every house, and we have to kill them using insecticides to avoid getting diseases like dengue fever or chikungunya. And when we kill these living beings, don't we create bad karma for us and have to bear the consequences of this killing action?
हम बहुत से लोगों का सवाल है। ये प्रकृति का तमो प्रधान स्वरूप है। हम कहते हैं सतयुग के अंदर ये सब कुछ भी नहीं था। सतो प्रधान स्थिति प्रकृति के अंदर ये सब नहीं होते। ये प्रकृति की तमो प्रधान स्थिति में ये सब बातें आती है। अवश्य सफाई नहीं है इसलिए ये मस्कीटोज आते हैं। अगर हम सफाई रखेंगे अच्छी तरह तो ये क्यों आएंगे मस्कीटोज? ये आने का कारण ही है कि सफाई नहीं रखते ठीक ढंग से।
और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है, लोगों का कहना यह है कि अगर सपोज आ गए और अगर हम उन्हें मारते हैं तो क्या हम कोई कार्मिक अकाउंट क्रिएट करें?
नहीं नहीं, हम इस बात को नहीं मानते कि हम कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते। बाकी मानव जो सर्वश्रेष्ठ है उसको अवश्य इनसे आज क्यों दुख मिल रहा है, क्योंकि मनुष्य के कर्म ऐसे हो गए हैं। अगर मनुष्य अपने कर्मों को सुधारे तो वो उनसे भी दुख न मिले, हम तो ये मानते हैं। और ये तमो प्रधान स्वरूप है प्रकृति का, इसलिए ये सब होता है। हम सफाई रखें तो नहीं होगा।
हाँ बिल्कुल, आज जो हमने बातें की, जो लोगों के सवाल लिए, जो बड़े पर्सनल सवाल भी थे, लेकिन वो लेने इतने जरूरी इसलिए भी हो जाते हैं कई बार कि उनसे जुड़े हुए बहुत से और लोग होते हैं जिनके जीवन में वो चल रहा होता है। कई बार वो नहीं हमारे साथ संपर्क कर सकते, नहीं लिख पाते, तो इसीलिए हमने ये आज बातें की हैं और परमात्मा को सही स्वरूप में जानने की कोशिश की, मेडिटेशन के बारे में जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।
हो सकता है कोई बात अभी हम प्रोग्राम में ना शामिल कर पाए हों, हो सकता है ये प्रोग्राम सुनने के बाद इस कड़ी में से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके मन में उठ रही हों, तो आप अपने सवालों के साथ हमें ईमेल तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा आपसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ब्रह्मा कुमारीज के देश विदेश में फैले कई सारे सेंटर्स हैं और आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वहां जाकर ही ना सिर्फ आपको कंप्लीशन में ये पता चल पाएगा कि आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो सारी कंफ्यूजन्स हैं वो दूर होंगी, बल्कि राजयोग को अगर आप सही परिपेक्ष में वहां कर पाते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो उससे बड़ा बाबा का घर जो है, ईश्वर का घर जो है, आपको पुकारता है। आप उसमें आराम से जा सकते हैं। अपने नजदीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए आप हमें या तो फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, यू कॉल अस ऑन 09999744555।
अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफर आगे भी यूं ही चलता रहेगा, आपसे यूं ही बातचीत का सिलसिला भी चलता रहेगा। अभी आपसे हम विदा लेते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।